أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں جہاں جماعت احمدیہ کو دعوت اللہ کی طرف مسلسل توجہ دلا رہا ہوں، وہاں ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنے کردار کو عظیم بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم سے بارہا متعدد جگہ یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ جب تک کردار میں عظمت نہ ہو، نہ بات میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے، نہ دعا میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہاری دعا آسمان کی طرف رفعت اختیار نہیں کر سکتی، آسمان کی طرف بلند نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا کردار اسے بلند نہ کر رہا ہو. اس میں قبولیت دعا کا ایک بہت گہرا راز ہے. اور دوسری جگہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قول حسن بہت اچھی چیز ہے، اس کے بغیر دعوت اللہ ممکن نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ عمل اچھے ہوں. تو در حقیقت یہ دونوں مضمون ایک ہی مرکزی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دعا میں بھی کہ خدا بھی بات اسی وقت سنتا ہے جب اس کے پیچھے عظمت کردار موجود ہو، اور اس کے بغیر دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوتی. تو بندے کیسے تمہاری بات سن لیں گے جو خدا کی نسبت کم رعوف اور رحیم ہیں، کم توجہ کرنے والے ہیں، خدا کی نسبت بہت ہی کم، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں در حقیقت، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بعض کمزوروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، بعض دفعہ بدکرداروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، لیکن بندوں میں یہ بات کم دکھائی دیتی ہے. خود ان کا کیسا بھی کردار ہو، اگر کسی اچھے کام کی طرف بلانے والے میں معمولی سا نقص بھی پائیں تو اکثر وہ اس نقص کو ابھار کر پیش کرتے ہیں اور اس کی ساری اچھی باتوں کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ اس کہنے والے کے اندر یہ خرابی موجود ہے. قرآن کریم سے جب یہ پتہ چلا کہ دعا کا بھی بنیادی طور پر عظمت کردار سے تعلق ہے اور استثنائی طور پر تو خدا کی رحمت لامحدود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے دعا سن لے، یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، مگر بندے بالعموم زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان پر وہی اچھا قول اثر کرتا ہے جس کے ساتھ عظمت کردار موجود ہو. اس لیے مبلغ بننے کے لیے جماعت کو اپنے کردار کو بلند کرنے کی نہایت شدید ضرورت ہے، اور جہاں دعوت اللہ کے وعدے ملتے ہیں وہاں مجھے یہی فکر شروع ہو جاتی ہے कि दावत अल्लाह करने वालों ने अपने अंदर कोई पाक तब्दीली पैदा भी की है कि नहीं। जहां करते हैं वहां फल लगने शुरू हो जाते हैं, जहां इस ज़मन में कोई मौसर इकदाम नहीं होता, ना जमात की इंतजामिया की तरफ से ना इंफरादी तौर पर, वहां फरिश्ते तो बन जाती हैं मगर उनका फल, उनको फल नहीं लगता। इस मामले की अहमियत का एक मुशाहदा मैंने अपने गुज़श्ता सफर वेल्स में किया। वेल्स में चंद दिन के लिए गया था, वहां जमात ने इलाके के मौजूदीन को सवाल जवाब की एक मजलिस के लिए बुलाया हुआ था। मेरे साथ बाएं हाथ वहां के शहर के बहुत ही हरबी अजीज दोस्त और मेयर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो गुज़श्ता दफा यहाँ तकरीब मुनक़िद करवाई थी जिसमें कुरान करीम के वेल्श तर्जमे की निकाब कुशाई की गई थी, उसमें एक लंबा सा आदमी जो अंग्रेज था और यॉर्कशायर की तरफ से आया था, वो कौन था? मैंने उनको बताया कि वो नोमान न्यूमैन है और वेल्स से ही ताल्लुक रखते हैं, वेल्श अहमदी हैं और गालिबन इस लिहाज से तारीखी हैसियत रखते हैं कि पहले वेल्श अहमदी हैं। तो उसके बाद एक लंबे अरसे तक वो मुझे बार बार यही कहता रहा कि उस शख्स के चेहरे पर एक ऐसी सदाकत थी और उस सदाकत का एक ऐसा गहरा असर मेरे दिल पर पड़ रहा था कि उससे बातें करते करते मुझे यकीन हो गया था कि यह शख्स सच्चा है और जो बात कह रहा है उसमें धोखा नहीं हो सकता। उसने कहा मेरे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा है उस शख्स ने, हालांकि थोड़ी बातें हुई लेकिन मैंने जब उनकी चाल ढाल देखी, उनकी बातों की तरस देखी, उनकी आंखों के अंदर रोशनी पाई, तो मुझे वो सरतापा सच्चाई दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त से लेकर अब तक मैं हर मजलिस में ये कहता हूं कि तुम जो बाद मुसलमान ममालिक के रवैये के नतीजे में इस्लाम को कंडेम करते हो, ये दुरुस्त नहीं है। उसने कहा मैं उनको कहता हूं कि मैंने ऐसे मुसलमान देखे हैं जिनसे तुम सबक सीख सकते हो, जो किरदार और अखलाक में एक मेयार है और एक नमूना है, इसलिए संजीदगी से इस्लाम के अंदर इसकी तहकीक की तरफ तवज्जो करो और तुम्हें इसमें बहुत सी सच्ची बातें दिखाई देंगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो किताबें मुझे दी गई थी मैं उनका मुताला कर रहा हूँ और आइंदा भी मैंने फैसला किया है कि मैं दिलचस्पी लूँगा, बावजूद इसके कि मेरा सियासी किरदार मजरूह हो रहा है और लोग ये कहने लग गए हैं कि ये तो मुसलमानों की तरफ मायल हो गया है, और बावजूद इसके कि बाद लोग यहाँ ऐसे जाहिल हैं कि जब मैं उनको समझाता हूँ तो वो ये कह देते हैं कि तुम डेविल के असर के नीचे आ गए, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारी ये जहालत असल में डेविल का असर है, क्योंकि सच्चाई की तलाश का ना होना जहालत है और सच्चाई की तरफ से आंखें बंद कर लेना और इस इम्कानी रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना कि तुम्हारे अलावा भी सच्चाई पाई जा सकती है, उसने कहा मेरे नजदीक ये शैतानियत है और वाकईतन ये बात दुरुस्त है। तो ये जो नेक असर इतना अच्छा छोड़ा हमारे एक अहमदी मुखलिस अंग्रेज दोस्त ने, ये वहां खत्म नहीं हुआ, जिस उस शख्स तक खत्म नहीं हुआ जिस पर यह असर पड़ा था, बल्कि आगे वो उस असर का मिशन बरदार बन गया और बासर होने की वजह से खुदा के फजल से बड़े बड़े अच्छे हलकों में वो बातें पहुंच रही हैं और अल्लाह ताला के फजल से वो दोस्त जो अब इस मजलिस में आए थे उनके अंदर भी एक नुमाया तब्दीली मैंने देखी, दिलचस्पी पाई और सब ने इस बात का, सब ने तो नहीं मगर भारी अक्सरियत ने इस बात का इजहार किया कि हम इस दिलचस्पी को मुस्तकिल करना चाहते हैं और ये आर्जी मुलाकात नहीं होगी बल्कि हम इंशाल्लाह तो उन्होंने नहीं कहा था, मैं अपने दर्ज दाखिल कर रहा हूँ कि वो हम ज़रूर जमात के लिटरेचर का मुतालिया करेंगे। चाहे एक दोस्त ने दूसरे, हम जब दूसरे दिन रवाना हुए तो सस्ते में एक जगह थोड़ी देर के लिए रुके, वहाँ उन्होंने अपने अहमदी दोस्त को कहा हुआ था कि जब वो आए तो मुझे ज़रूर मिलाएं, मैंने साथ तस्वीर भी खिंचवानी है और बातें भी करनी है। चाहे उन्होंने भी इसी किस्म के लिए ख्याल पैदा किया। तो जमात के लिए जो दिलचस्पी पैदा हो रही है वो इस्लाम के लिए एक अजीम दरवाजा खुल रहा है, और यही वो रास्ता है जिससे लोगों ने दरअसल इस्लाम में दाखिल होना है। इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी गई, बहुत से मुसलमान ममालिक ने अपने जाहिलाना रवैये के नतीजे में इस्लाम को बदनाम किया है, और जगह जगह उन रस्तों को बंद कर दिया गया है जिन रस्तों से लोग इस्लाम में दाखिल हो सकते थे। इसलिए अब दरवाजा है, दरवाजा अगर कोई है तो जमात अहमदिया का दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे को वसी करना ये बुनियादी मसला है। और ये दरवाजा इस तरह तो नहीं है जिस तरह हमारी इस मस्जिद के सामने दरवाजा है या आपके घरों के दरवाजे होते हैं, ये एक तमसीली दरवाजा है जो वुसत इख्तियार कर सकता है। और ये वुसत अहमदियों ने अपने अजमत किरदार के जरिए पैदा कर ली है, वरना यह दरवाजा खुद तंग रहेगा और खुलेगा नहीं। एक नुमान की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों नुमानों की जरूरत है जो मुख्तलिफ मुल्कों में पैदा हों और अपने अजमत किरदार के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ मतवज्जो करें, और उनके दिल के रस्ते से लोग फिर इस्लाम में दाखिल होना शुरू हों, उनकी आंखों की राहों से वो इस्लाम के हुस्न का मुतालिया करें। इस नुक्ते निगाह से दाईन इल्लाह की जरूरत की शिद्दत महसूस हो रही है, मगर इस नौ के दाईन इल्लाह जिसका मैं बयान कर रहा हूं कि उनके साथ उनके किरदार में एक हुस्न और कशिश हो। बाद लोग ये कह देते हैं कि हम हमारा किरदार ठीक है, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी का हाथ नहीं मारते, और यही तबलीग है। लेकिन यह गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूं कि कुरान करीम ने अजमत किरदार की अहमियत बयान करने के बावजूद कौले हसन को पहले रखा है। वमन आसन कौल मिम्मन दा इल्लाह, और गूंगी शराफत का नाम नहीं लिया, और अंबिया की तारीख जो हमारे सामने पेश की है उसमें कहीं भी गूंगी शराफत दिखाई नहीं देती, बल्कि अमरे वाकया यह है कि शराफत को देखकर अगर वो गूंगी हो तो मुखालफत खत्म हो जाया करती है। और लोग ये इसरार करते हैं कि तुम शरीफाना जिंदगी बसर करो लेकिन मुंह से कुछ ना बोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो दावत अल्लाह महज अजमत के दाद से नहीं हुआ करते, उसके लिए जुबान का हरकत में आना बहुत जरूरी है, और उसके नतीजे में शराफत के बावजूद फिर मुखालफतें पैदा होती हैं। लेकिन जो शरीफ दिल हैं उनको शराफत जीत लेती है, जो बदकिरदार लोग हैं या कजी रखने वाले लोग हैं वो अपने दिल के मर्ज का शिकार हो जाया करते हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है कि ऐसे दाईन अल्लाह की जरूरत है जिनकी जुबान भी कौले हसन पर कायम रहे, और कौले हसन की तारीफ मैं पहले बारहा कर चुका हूं। इसमें दलील की बात नहीं है सिर्फ, इसमें हुस्ने कलाम की बात है, यानी ऐसे रंग में बात की जाए जिसमें दिलकशी पाई जाए, बस बात की के अंदाज में दिलकशी हो और किरदार आला और मजबूत हो और किरदार लोगों को अपनी तरफ मायल करने वाला हो, तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये दो शर्तें खुदा ताला ने लगा दी हैं, इसके बाद फरमाया है कि जाओ मैदान में, कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। वो जो तुम्हारी जान के दुश्मन है, यहां तक ये आयत फरमाती है आगे जाके, वो जान निसार दोस्त बन जाएंगे। लेकिन एक और शर्त साथ ये लगाई कि सब्र भी साथ रखना, वो लोग जो सब्र के साथ इन बातों पर कायम रहेंगे, यानी कौले हसन के जरिए खूबसूरत कलाम के जरिए लोगों को अपनी तरफ मायल करते रहेंगे और उनका किरदार उनके कलाम को झुटलाने वाला नहीं बल्कि तकलीफ देने वाला होगा, उनको ये खुशखबरी है कि अगर वो सब्र के साथ इस्तेकामत के साथ इस तरीक पर कारगर हों तो उनके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और दुश्मनी का जिक्र जरूर फरमाया कि इसके बावजूद कौले हसन और आला किरदार के बावजूद दुश्मनी हुआ करती है, फरमाया तुम इस पर कायम हो जाओ, दुश्मनियां तब्दील करना हमारा काम है, और हम दुश्मनों के दिलों से रहमत के चश्मे फोड़ देंगे, यहां तक कि वो लोग जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं तुम पर खून निछावर करने में अपना फख्र समझेंगे। कितना अजीमुशान पैगाम है और कितने मुख्तसर अल्फाज में खुदा ताला ने इस सारे मजमून को वो जो एक समंदर की तरह है एक कूजे में बंद कर दिया है। बस दाईन अल्लाह के लिए बड़ा जरूरी है कि वो फौरी तौर पर अपने किरदार का मुहासबा करें और अपनी तर्ज कलाम का भी मुहासबा करें। بہت سے مبلغین میں نے ایسے دیکھے ہیں جو زندگیاں تبلیغ میں صرف کرتے ہیں لیکن ان کی بات کاٹنے والی ہوتی ہے. وہ جب آگے سے کوئی سختی کی بات سنتے ہیں یا تیزی دیکھتے ہیں تو جواب میں بھی وہ تیزی پیدا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو شکست دینا ہمارا کام ہے. حالانکہ دشمن کو شکست دینا ہرگز کام نہیں ہے, دشمن کا دل جیتنا کام ہے. فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, یہ مقصد بنا دیا خدا تعالیٰ نے تبلیغ کا, اور کتنا واضح مقصد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم دشمن کو شکست پہ شکست دے سے چلے جاؤ گے, فرمایا کہ پھر یہ ہوگا اور یہ ہونا چاہیے کہ شدید دشمن بھی تمہارا محب اور جانثار دوست بن جائے. جس کو آپ نے دوست بنانا ہو اس کو تیز کلام کے لیے ذریعے تو دوست نہیں بنایا جا سکتا. گھروں میں بچوں میں نے دیکھا ہے جب گفتگو چلتی ہے اگر کوئی ایک بچہ دوسرے کو تیزی سے جواب دے تو وہ دوسرا اور تیزی سے جواب دیتا ہے, یہاں تک کہ بعض دفعہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کو جو ہاتھ میں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہیں, قرآن کریم فرماتے ہیں جان کے دشمن, ان کے ساتھ آپ تیز کلامی سے کس طرح مقابلہ کریں گے؟ ان کے اندر جو بد رجحانات ہیں ان کو اور بھی آپ آگ لگا دیں گے, ان کے اندر جو مخالفتوں کا تیل ہے ان کو تیلی دکھائیں گے. اس لیے قرآن کریم نے بہت ہی حسین اور بہت ہی کامل کلام فرمایا ہے, فرمایا ہے یہ سب کچھ کرو لیکن مقصد یہ پیش نظر رکھنا کہ تم نے دشمنوں کے دل جیتنے ہیں. اور قول حسن اس تعریف کے تابع ہے. قول حسن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غالب آ جاؤ بحث میں, کیونکہ بحث میں غالب آنے کے نتیجے میں دل ضروری نہیں کہ جیتے جائیں. بعض دفعہ مخالفتیں بڑھ جایا کرتی, بعض دفعہ دشمن ہیٹا محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے اور رد عمل میں اور زیادہ سختی کرتا ہے. تو فرمایا تمہاری طرز کلام حسین ہونی چاہیے, یعنی دل جیتنے والی ہو. اور عمل کے متعلق تو پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے, عامل صالحا, جب اعمال حسین ہوں تو قول کے اندر نہ صرف یہ کہ مزید حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ وزن پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بغیر حسین قول کھوکھلا ہوتا ہے, اس میں جذب کی طاقت نہیں ہوتی. انفرادی طور پر تو ہمیں ضرورت ہے ہی, لیکن اب قومی طور پر نئی صدی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے رستے کھل رہے ہیں کہ صرف یہ سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے دروازے کھولیں. خدا تعالیٰ کی تقدیر لوگوں اور قوموں کے دلوں کے دروازے کھول رہے ہیں, اور بعض ایسی قوموں کی طرف سے جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں جن میں پہلے کبھی تبلیغ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا گیا اور مطالبے شروع ہو گئے. چین کی طرف سے بجائے اس کے کہ ہماری کوششیں کارآمد ثابت ہوتی یا بار بار ثابت ہوتی, مسلسل ایسے لوگوں کی طرف سے رابطے ہو رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا, لیکن اس کا آغاز بھی ایک اچھے احمدی کے اعلیٰ کردار کے نتیجے میں ہوا. ایک چینی افسر, ایک چینی اسکالر باہر آئے ہوئے تھے, ایک پروفیسر باہر آئے ہوئے تھے, اس طرح رابطے ہوتے ہیں. اس نے ایک ایسے احمدی کو دیکھا جس کو اس نے مختلف پایا, اور وہ ایسا احمدی تھا جس کی شرافت گونگی نہیں تھی بلکہ بولنے والا تھا. اس کے کردار میں دلچسپی ہی, اس نے زبانی اس کو بتانا شروع کیا کہ میں کیوں مختلف ہوں, ہمارا کیا اخلاقی ضابطہ ہے جس کے نتیجے میں, جس کی پیروی کے نتیجے میں تم میرے اندر ایک فرق دیکھ رہے ہو. چنانچہ اسلام کا تعارف, احمدیت کا تعارف, اور اس کے نتیجے میں ایک خاص مثال جو میرے سامنے ہے, اس نے وسیع پیمانے پر کیونکہ صاحب اصل آدمی تھا چین سے رابطے شروع کیے. شروع میں ان رابطوں کا منفی نتیجہ نکلا اور اس کو بڑی سختی سے ہدایتیں آئیں کہ خبردار اس فرقے کے قریب نہ جانا, یہ تو بڑا خطرناک فرقہ ہے اور مرتد لوگ ہیں, اور جو باتیں ہم نے سنی ہوئی تھیں وہ دوران کی تھی. میں نے بھی ان سے رابطہ اپنا قائم رکھا, ان کو کہا کہ آپ ایک طرفہ باتیں سن کے ٹھنڈے نہ ہوں, دشمن یہ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں. خدا تعالیٰ نے ہدایت کے رستے میں شیطان بھی لگائے ہوئے ہیں, وہ آوازیں دیتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط رستہ, ادھر آؤ ادھر آؤ, کان میں باتیں پھونکتے ہیں, پس پردہ یا پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. और उसको कहते हैं उससे दूसरों से बात करने की जरूरत ही कोई नहीं, तो हमारी बात सुनो और समझ लो कि ये शैतानी लोग हैं, इनके साथ इनके करीब भी नहीं जाना। इसलिए आप लिटरेचर का मुताला जरूर कर लें, उनको मौका दें, हमें भी मौका दें। जहाँ से बात चीज़ें उनको भिजवाई गई, उन्होंने मुताला किया और उनके दिल की काया पलट गई। उन्होंने फिर दोबारा रबते किए और अब मुझे इतला मिली है कि उस उन रबतों के नतीजे में उन लोगों ने भी वहां तहकीक की और उनके बड़े बाअसर रहनुमाओं ने में से बाद ने उनको लिखा है कि हमने अब जो तहकीक की है तो पता चला है कि यही जमात है दरअसल जो दर हकीकत इस्लाम की अलमबरदार है। और हमें इस तहकीक से यह भी पता चला है कि यही जमात है जो अमन परस्त है और तलवार के जरिए नहीं बल्कि मोहब्बत के जरिए और तगाम के जरिए दिलों को फतह करने कश्यार रखती है, ये इनका किरदार है। इसलिए हमें दिलचस्पी पैदा हो गई है और बाद लोग वहां से कोशिश कर रहे हैं कि जिस कदर जल्द मौका मिले वो यहाँ आए, कुछ अर्सा यहाँ ठहरें और जमात के मुतालिक मजीद मालूम हासिल करें। इसी तरह रूस में भी खुदा तला के फजल से वसी पैमाने पर रबतों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमें अल्लाह तला ने पहले से ही तौफीक अता फरमा दी कि इन कौमों के लिए जो लिटरेचर का खला था उसे पूरा करना शुरू करें और इस वक्त हम खुदा के फजल से पहले ही इस मुकाम पर खड़े हैं कि जब मुतालबा आए उनको कुछ ना कुछ जरूर पहुंचा दें, खसूसियत के साथ पुराने करीम उनकी जुबान में, क्योंकि इससे बेहतर और कोई लिटरेचर मुहैया हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो इस्लाम तो है ही, लेकिन दुनिया भर के लिटरेचर में कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं। इसलिए पुराने करीम में तो हम खुदा के फजल से इस मामले में खुद कफील हो चुके हैं, कसरत के साथ शाया हो रहा है और स्टॉक में भी मौजूद है। लेकिन इसके अलावा भी लिटरेचर तैयार किया गया है जो मुतफर्रक उमूर से मुतल्लिक उनसे तारुफ करवाएगा। तो इस ज़मन में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब नहीं खुशखबरी दे रहा हूँ कि बाहर से दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं और दीवारें टूट रही हैं। आप अपने दरवाजों को क्यों तंग रखें? अगर इन खुलते हुए दरवाजों के मुकाबले पर आपने भी अपने दरवाजे को शादा न किए और वसी तर न करते चले गए तो फिर इस्लाम के ना फैलने की जिम्मेदारी आप पर होगी, फिर आप खुदा के सामने जरूर जवाब देंगे। और जैसा कि मैंने बयान किया है, दरवाजे खुलने का मतलब यह है कि हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट ज्यादा हैं, यानी बजाय इसके कि एक मुबल्लिग या 10 या 100 मुबल्लिग या 100 दाइये निरल्ला या 1000 दाइये निरल्ला इस्लाम के लिए खुले रस्ते बन जाएं और इस्लाम के लिए लोगों को दाखिल होने के लिए अपने दिलों के रास्ते पेश करें, लाखों की जरूरत है और हर जगह इन रास्तों को बढ़ाने की जरूरत है। इस जमन में जैसा कि मैंने पहले भी बारहा कहा है, हमें इन कौमों की तरफ बैरूत इन मुल्कों से बाहर तवज्जो करनी चाहिए। मुल्कों के जो दरवाजे खुलेंगे और खुल रहे हैं अल्लाह के फजल से, उनसे तो हम जमाती और इंतजामी सतह पर रबते करेंगे और जहां तक तौफीक होगी इन रबतों को मौसर बनाएंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं इन कौमों के दरवाजे खुल रहे हैं तो मुराद ये है कि ऐसे दरवाजे भी हैं जो उन मुल्कों से बाहर हैं। करोड़ों चीनी है जो चीन से बाहर जिंदगी बसर कर रहा है और लाखों रूसी होंगे या मशरकी कम्युनिस्ट दुनिया के बसने वाले लोग लखूखा ऐसे हैं जो अपने मुल्कों से बाहर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए जो रुझानात वहां पैदा हो रहे हैं उससे बढ़कर रुझानात इन मुल्कों से बाहर पैदा होने के अकली इम्कान हैं। पहले तो जब आप किसी चीन से ताल्लुक रखने वाले चीनी से बात करते थे तो ये खौफ उसको दामनगीर हो जाता था कि अगर ये सच्चाई भी है और मैं इसको कबूल भी कर लूँ तो मेरा मुल्क इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। एक रूसी से जब आप बात करते थे तो वो खौफजदा हो जाया करता था। मुझे याद है कॉलेज के जमाने में, एमबीए हॉस्टल के जमाने में, उसके बाद की बात है, मैं पार्टीशन के बाद जब मैं न्यू हॉस्टल में रहता था, एक रूसी वफद आया हुआ था। हम कुछ तलबा कुछ मिलकर एमबीए लिटरेचर तकसीम करने के लिए उन तक पहुंचे और रूसी लिटरेचर तो हमारे पास नहीं था, मगर अंग्रेजी और बाद दूसरे लिटरेचर भी वो लोग अंग्रेजी जानते थे, वो उनको दिया। तो हम सब ने महसूस किया कि वो शख्स खौफजदा हो गया था, और उसके साथ एक और शख्स भी उसके नायब के तौर पर था, हो सकता है वो इंटेलिजेंस का आदमी हो, क्योंकि उन दिनों में खसूसियत से जब रूसी वफद बाहर जाया करते थे तो उनके साथ इंटेलिजेंस ऑफिसर जरूर जाया करते थे। अब इस पर बहुत फर्क पड़ चुका है। वो उसकी तरफ देखता था, उसकी आंखों में खौफ था, उसने मदद की कि नहीं मैं ये कबूल नहीं कर सकता। इसके मुकाबले पर बहुत से दूसरे थे जिन्होंने कबूल कर लिया। जहां तक मुझे याद है रशियन ने या कबूल किया ही नहीं था या सरसरी से दिलचस्पी एक अच्छी होगी, मुझे तो यही याद है कि कबूल नहीं किया। अब वो कबूल करते हैं, अब मुतालबे करते हैं। अब जहां जहां रशियन एम्बेसडर से या एम्बेसी से हमारे दोस्तों ने रबते किए हैं, उन्होंने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। और एक एम्बेसडर तो नहीं थे, मगर अफ्रीका के दौरान एम्बेसी के एक सीनियर अफसर थे, डेप्यूटी एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझसे, उनको पहले पहुंच चुका था कुरान करीम, उन्होंने मुझसे बहुत ही तारीफ की, ये तो ऐसा आला दर्जे का तर्जमा है कि इससे दिल पर गहरा असर पड़ता है और आपको इसको रूस में फैलाना चाहिए। तो रूसी हो या चीनी हो या वो उन मुल्कों के बसने वाले, जहां तक हमारी रसाई नहीं थी और अभी तक पूरी तरह नहीं है, उनके जिगर गोशे जो बाहर बस रहे हैं उन तक तो आपकी रसाई हो सकती है। बहुत से अहमदियों को, जिनको भी तौफीक मिले बाहर इन इलाकों के बाहर के अहमदियों को, उनको अपना मिशन बनाना चाहिए कि हमारे लिए इन कौमों से इस्लाम के राब्तों में इजाफा हो जाए और हम वो दरवाजा बन जाएं जिनसे ये इस्लाम में दाखिल हो। पर इस तरह इस्लाम का दरवाजा वसी होगा और जितने अहमदी ज्यादा इसमें शामिल होंगे उतने ही इसमें वसत पैदा होती चली जाएगी। इसी मन में एक और बहुत जरूरी नसीहत यह है, पहले भी की थी लेकिन दोस्त अमूमन भूल जाते हैं, इसलिए बाद नसीहतें बार बार करनी पड़ती हैं। वो दो लोग, वो मुखलसीन, वो सादतमंद अहमदी जिन्होंने तौफीक पाई कि अगली सदी के लिए अपने बच्चे हदीयतन इस्लाम को पेश करें, वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि हम इनका इनकी तरबियत किस तरह करें, उनको समझाने के लिए, उनको तरीके सिखाने के लिए, उनकी मजीद रहनुमाई के लिए एक बाकायदा शोबा कायम कर दिया गया। और तहरीक जदीद को मैंने समझा दिया है कि किस किस्म का लिटरेचर तैयार हो, किस किस्म के की तरबियती नस्ाहे होनी चाहिए। माँ बाप को, बच्चों को तो वो करेंगे, हमने तो माँ बाप को भी करनी है, और क्या रहनुमाई होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला इसके मुताबिक काम शुरू कर देंगे जल्द। फिर उनको ये भी समझाया है कि इन बच्चों के लिए इसके दूसरे कदम के ऊपर लिटरेचर तैयार करना है और मुख्तलिफ जुबानों में तैयार करना है, ताकि शुरू से ही जिस रंग में हम तरबियत करना चाहते हैं उनके घरों में वो तरबियत शुरू हो जाए। इस जमन में मैंने ये नसीहत की थी कि जिन वाकफीन ने नौ की पेशकश करने वालों के यहाँ बेटियां पैदा हुई उनको क्या सिखाएं। बेटियों के लिए वो सहूलत नहीं है जो बेटों के लिए हो सकती है कि मैदान में जहां मर्जी उनको फेंक दो, उनके अपने कुछ हिफाजत के तकाजे हैं, कुछ उनके अपने नौई तकाजे हैं, जिनके पेश नजर हम उनसे उसी तरह काम नहीं ले सकते जिस तरह हर वक्त वाक्त जिंदगी मर्द से काम ले सकते हैं। इसलिए उनको मैंने ये कहा था कि ऐसी बच्चियों को तालीम के मैदान में आगे लाएं, इल्मी काम सिखाएं, और इल्म तो बढ़ाना ही है लेकिन इल्म सिखाने का जिस निज़ाम जो है, जिसको बी एड या एम एड कहा जाता है, ऐसी डिग्रियां जिनमें तालीम देने का सलीका सिखाया जाता है, उनमें उनको दाखिल करें आइंदा बड़े होकर, लेकिन अभी से उनकी तरबियत इस रंग में शुरू करें। फिर डॉक्टरों की ज़रूरत है, ख्वातीन डॉक्टरों को खुदा ताला अगर तौफीक दे तो वो बहुत बड़ी खिदमत कर सकती हैं और बहुत गहरा असर छोड़ सकती हैं, और इस रास्ते से फिर वो इस्लाम को भी आगे اسلام کے پیغام دینے میں بھی دوسروں پر فوقیت رکھتی ہیں. اس لیے احمدی خواتین کو ڈاکٹر بن کر اپنی زندگیاں پیش کرنی چاہیے یا ان بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے جو بچیوں کو جو خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں. اسی طرح میں نے زبانوں کا کہا تھا, اور جن زبانوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے ان میں روسی اور چینی دو زبانیں خصوصیت کے ساتھ اہمیت رکھتی ہیں. جماعت احمدیہ میں جن زبانوں میں کمی ہے ان میں ایک اسپینش ہے مثلا, اس کی طرف توجہ شروع کر دی گئی ہے خدا کے فضل سے. فرانسیسی میں ہمارے بہت سے فرینچ سپیکنگ افریقن ممالک ہیں جہاں کثرت سے اچھی فرانسیسی بولنے والے ہمیں مہیا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں خدا کے فضل سے. لیکن چینی زبان میں اور روسی زبان میں ہم بہت کمی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح اٹیلین میں بھی کمی ہے, مگر سب سے بڑی ضرورت اس وقت اور عظیم ضرورت چینی اور روسی زبان جاننے والے احمدیوں کی ہے. اس لیے جہاں نوجوان جن کو یہ سہولت حاصل ہو تعلیمی اداروں میں اس طرح توجہ کر سکیں ان کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ وہ توجہ کریں. لیکن یہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ایسے ملکوں میں جہاں چینی اور روسی زبان سکھانے کی سہولتیں موجود ہوں ان کو بچپن سے ان کو سکھانا چاہیے, اور ان کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے اگر کچھ کیسٹس وغیرہ مہیا کیے جا سکیں, ویڈیوز مہیا کیے جا سکیں, بچوں کے چھوٹے چھوٹے رسالے کہانیوں کی کتابیں وغیرہ یہ مہیا کی جائیں, تو بہت بچپن سے اگر زبان سکھائی جائے وہ اتنے گہرے نقش دماغ پر قائم کر دیتی ہے کہ اس کے بعد بچے اہل زبان کی طرح بول سکتے ہیں. اور بڑی عمر میں سیکھی زبان صاحب کتنی محنت کرے وہ اہل زبان جیسی زبان نہیں بنتی. توی اور فطری طور پر جو ذہن سوچتا ہے وہ بچپن سے اگر سیکھی ہوئی زبان ہے تو وہ سوچ اس کی بے ساختہ ہوتی ہے, قدرتی اور توی ہوتی ہے. لیکن اگر بعد میں زبان سیکھی جائے تو سوچ پہ کچھ نہ کچھ قدم رہتی ہے, کچھ نہ کچھ پابندیاں رہتی ہیں, اور پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے. بعض لوگ نسبتاً تیز بڑھاتے ہیں, بعض آہستہ, مگر جو طبی فطری روانی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اہل زبان بنانے کے لیے بہت بچپن سے زبان سکھانی پڑتی ہے. اگر کنگھوروں میں زبان سکھائی جائے تو یہ بھی بہت اچھا ہے, بلکہ سب سے اچھا ہے. ایسی اگر دائی مل جائے, ایسی نرس مل جائے, اور جو توفیق رکھ سکتے ہیں ایسی نرسوں کو رکھنے کی وہ رکھیں جو چینی نرس ہو, تو بچوں کو اب بچپن سے گود میں کھلاتے کھلاتے چینی زبان سکھا سکتے ہیں. روسی زبان جاننے والی اہل زبان کوئی عورت مل جائے تو بچے اس کے سپرد کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو باتیں حسب توفیق ہوں گی, مگر جن کو توفیق ہے ان کو چاہیے کہ وہ بہت بچپن سے اپنے بچوں کو چینی اور روسی زبان سکھانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ ہمیں 100 کی ضرورت ہے یا 1000 کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قومیں ہیں اور ان کو اتنی عظمت حاصل ہے اس وقت دنیا میں کہ اگر یہ دونوں قومیں مثلا دنیاوی لحاظ سے اکٹھی ہو جائیں تو ساری دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے, یعنی ان کے حق میں ہو جائے اور باقی دنیا کے خلاف ہو جائے, اور بہت سی بڑی بڑی سیاسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں. ان کا اس وقت الگ الگ ہونا ہی بعض قوموں کی خوش قسمتی ہے, اور وہ زبردستی بھی دخل اندازی کر کے اس خوش قسمتی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور الٹے نتیجے نکلتے ہیں. مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں ان کے لڑنے یا نہ لڑنے, دشمنی یا دوستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام دونوں کے لیے برابر ہے, اور ہم نے جو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے ہمیں زباندانوں کی ضرورت ہے, ہر قسم کے زباندانوں کی ضرورت ہے, جو تحریر کی مشق بھی رکھتے ہوں, بولنے کی مشق بھی رکھتے ہوں, ترجموں کی طاقت بھی رکھتے ہوں, تصنیف کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. اس لیے جتنے بھی ہوں کم ہوں, یعنی 1 ارب کے لگ بھگ یا شاید اس سے زائد اب چین کی آبادی ہے, और रूस और रूसी जुबान जानने वालों की आबादी भी बहुत वसी है। मुझे इस वक्त पूरी तरह याद तो नहीं, लेकिन 50 करोड़ से जायद होंगे जो रूसी जुबान जानने वाले लोग हैं या बोलने वाले। इसलिए जितने भी अगर सारे वाकफी भी ये जुबान सीख लें तो वो कोई ज्यादा नहीं होगा। तो मर्दों को भी सिखाएं, मैंने बच्चों को भी सिखाएं, लेकिन बेटियों को खसूसियत से, क्योंकि इल्मी काम में हमें वाकफीन बेटियां बहुत काम आ सकती हैं। उन्होंने मैदान में भी जाना होगा, लेकिन वो तसानीफ करेंगी, वो घर बैठे हर किस्म के खिदमत के काम इस तरह कर सकती हैं कि अपने खानदानों से उनको अलग ना होना पड़े। इसलिए उनको ऐसे काम सिखाने की खसूसियत से जरूरत है। बच्चों को तो हम संभाल लेंगे, हम उनको किसी जामिया में दाखिल करेंगे, किसी खास मुल्क में उनका तयन होगा तो उस जुबान को के ऊपर उनको उनको माहिर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बच्चियों पर हमारा ऐसा अख्तियार नहीं हो सकता, ना मुनासिब है, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि इस तरह बचपन में उनको अलग करके तो पूरी तरह जमाती निज़ाम के ताबे किया जाए। इसलिए वालदैन का दखल बच्चियों के ऊपर लाजिमन जारी रहेगा या बाद में उनके सामने होगा। इसलिए अगर वो जुबानें सीख लें तो घर बैठे बड़ी आराम से खिदमत कर सकती हैं, और जब जुबानें सीखें तो जिस वक्त उनके अंदर सलाहियत पैदा हो उनको फिर उन जुबानों में टाइप करना भी सिखाया जाए और उन जुबानों का लिटरेचर उनको पढ़ाया जाए। ये ना समझें कि जुबान बोलना चालना काफी होता है या लिखना पढ़ने का सलीका आ जाए तो ये काफी है। लिटरेचर जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही जुबान में वसत पैदा होती है। इसलिए फिर कसरत के साथ इनको रशियन क्लासिकल नावल पढ़ाने पड़ेंगे, रशियन क्लासिकल मजामीन, क्लासिकल शोरा, मॉडर्न शोरा, और यही हाल चीन में भी, चीनी में जुबान में भी होगा, ताकि बचपन से ही इनका इल्मी जखीरा इतना वसी हो जाए कि वो बड़ी सहूलत के साथ एक फितरी रौ के साथ अज खुद इल्मी कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वाकफी ने जिंदगी इस पैगाम को अच्छी तरह जहन नशीन करेंगे। और आखिरी बात यही है फिर भी कि इसके साथ उनकी अजमत किरदार के लिए अभी से कोशिश शुरू कर दें। बचपन में किरदार बनाए जाते हैं, दरअसल अगर ताखीर हो जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मुहावरा है कि लोहा गर्म हो तो उसको मोड़ लेना चाहिए, लेकिन ये जो बचपन का लोहा है ये खुदा ताला एक लंबे अरसे तक नरम ही रखता है, और इस नरमी की हालत में इस पर जो नकूश आप कायम कर देते हैं वो दायमी हो जाया करते हैं। इसलिए ये वक्त है तरबियत का, और तरबियत के मजमून में ये बात याद रखें कि मां बाप जितनी चाहें जुबानी तरबियत करें, अगर उनका किरदार उनके कौल के मुताबिक नहीं तो बच्चे कमजोरी को ले लेंगे और मुलूक में उनको छोड़ देंगे। ये दो नस्लों के रास्ते के वक्त एक ऐसा असूल है जिसको भुलाने के नतीजे में कौमें हलाक भी हो सकती हैं और याद रखने के नतीजे में तरक्की भी कर सकती हैं। एक नस्ल अगली नस्ल पर जो असर छोड़ा करती है उसमें अमूमन ये असूल का फरमा होता है कि बच्चे माँ बाप की कमजोरियों को पकड़ने में तेजी करते हैं और उनकी मजबूत किरदार उनकी बातों की तरफ कम तवज्जो करते हैं। अगर बातें अजीम किरदार की हों और बीच में से कमजोरी हो तो बच्चा बीच की कमजोरी को पकड़ेगा। इसलिए याद रखें कि बच्चों की तरबियत के लिए आपको अपनी तरबियत जरूर करनी होगी। इन बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों तुम सच बोला करो, तुम्हें मुबल्लिग बनना है, तुम बदयानती ना किया करो, तुम्हें मुबल्लिग बनना है, तुम गीबत ना किया करो, तुम लड़ा झगड़ा ना करो। और ये बातें करने के बाद फिर माँ बाप ऐसा लड़ें झगड़ें, फिर ऐसी मुगल्लादात बकें एक दूसरे के खिलाफ, ऐसी बेइज्जतियां करें कि वो कहें कि बच्चे को तो हमने नसीहत कर दी, अब हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जो उनकी अपनी जिंदगी है वही बच्चे की बनेगी। जो फर्जी जिंदगी उन्होंने बनाई हुई है कि बच्चा ये करो, बच्चे को कौड़ी की भी उसकी परवाह नहीं होती। ऐसे माँ बाप जो झूठ बोलते हैं वो लाख बच्चों को कहें कि जब तुम झूठ बोलते हो बड़ी तकलीफ होती है, तुम खुदा के लिए सच बोला करो, सच्चाई में जिंदगी है। वो बच्चा कहता है ठीक है ये बात, लेकिन अंदर से वो समझता है कि माँ बाप झूठे हैं और वो जरूर झूठ बोलेगा। इसलिए दो नस्लों के जोड़ के वक्त ये असूल का फरमा होता है और इसको नजरअंदाज करने के नतीजे में आपस में खला पैदा हो जाते हैं। जिन यूरोपियन ममालिक में मैंने सफर किया, हर एक ये शिकायत करता है कि हमारी नस्ल और अगली नस्ल के दरमियान एक खला पैदा हो गया है। और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये खला तुमने पैदा किया है, तुमने जुबानी तौर पर इनको आला अखलाक सिखाने की कोशिश की, तुमने जुबानी तौर पर इनको आला किरदार समझाने की कोशिश की, तुमने कहा कि इस तरह गलत मदद नौजवानों से ठीक नहीं, इस तरह तुमने ये हरकतें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगियों में अंदरूनी तौर पर इन्होंने यही बातें देखी थी, जिनके ऊपर कुछ मुलम्मा था, कुछ दिखावे के चादरें पहनाई गई थी, और दर हकीकत ये बच्चे जानते थे और समझते थे कि तुम खुद इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हो, इसलिए वो बने हैं जो तुम्हारी अंदरूनी तस्वीर है, और तुम जो खला महसूस कर रहे हो अपनी बैरूनी तस्वीर से महसूस कर रहे हो। वो तस्वीर जो तुम देखना चाहते थे इनमें, जो तुम्हारे तस्वुर की दुनिया थी, तुम्हारे अमल की दुनिया बन गई, लेकिन तुम्हारे तस्वुर की दुनिया की कोई ताबीर नहीं कर रहा, इसलिए तुम बजाहिर इसको खला समझ रहे हो, हालांकि ये तसलसल है, बुराइयों का तसलसल है जिसकी चोटियां बुलंदतर होती चली जा रही हैं। या अगर गहराई के इस्तेलाह में बातें करें तो खारे मुजल्लत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो जमात अहमदिया को अगली नस्लों के किरदार की तामीर में इस उसूल को हमेशा याद रखना होगा, वरना वो हमेशा धोखे में मुबतला रहेंगे और अगली नस्लों से उनका इख्तियार जाता रहेगा, उनकी बातें नहीं मानेंगे। खुसूसन वाकफी ने नौ के बच्चों पर बहुत ही गहरी से बदला दिया था। 5,000 या ज्यादा बच्चे जितने भी इस दौर में पेश होते हैं, इन्होंने अगली दुनिया संभाल ली है, अगली नस्लों की तरबियत करनी है, नए कौमों के चैलेंजों का सामना करना है, और इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए बड़े बड़े मुकाबले करने वाले लोग जो इनमें से पैदा होंगे, बड़े बड़े मार्के सर करने हैं। आप अगर इस मजमून को भूलकर आम गफलत की हालत में अपनी साबका जिंदगी बसर करते चले जाएंगे तो आइंदा पैदा होने वाले वाकफीन पर आपके बद असरात मुतरतर हो जाएंगे, और फिर जमात जितना भी कोशिश करेगी उनकी वैसी इस्लाह नहीं कर सकती। मैंने देखा है जामिया में जो बद आदतों वाले बच्चे आते हैं, लाख जोर मारे उस्ताद उनकी बद आदतें कुछ ना कुछ मध्यम पड़ जाती हैं, वो मिटती नहीं। बद आदत को मिटाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अंदरूनी तौर पर बाद लोगों में एकदम तकवा की हालत पैदा हो जाती है, खुदा का खौफ पैदा हो जाता है, वो फिर उस अंदरूनी ताकत के जरिए खुदा के फजल से अपने सारी बदियों को उतार फेंकते हैं, लेकिन इसको इनकलाब कहा जाता है। मैं इस वक्त ऐसे इनकलाब की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरबियत के असूलों की बात कर रहा हूं। तो जहां तक तरबियत का ताल्लुक है, आपने अगर ये वाकफी अच्छी हालत में सुलझी हुई तबीयतों के साथ जमात के सामने पेश किए तो इंशाल्लाह ताला इस जौहर काबिल से बहुत अजीम इनकलाबात बर्पा होंगे इंशाल्लाह, और जमात इनसे बड़े बड़े अजीम फवायद हासिल कर सकेगी। लेकिन अगर मामूली कजियों वाले भी आए तो बाज़ दफा वो कजियां फिर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बाज़ दीवारों में रखने पड़ते हैं, वो सती होते हैं, और इंजीनियर देखते हैं कहते हैं कोई खतरे की बात नहीं, मगर बाज गहरे होते हैं और वो वक्त के साथ फटने शुरू हो जाते हैं और फिर छतें भी उनकी वजह से गिर जाती हैं। तो बुनियादी अखलाकी कमजोरियां उन गहरे रखनों से के मुशाबे हुआ करती हैं। इनको अगर एक दफा आपने पैदा होने दिया तो आइंदा नस्लों की छतें गिरा दें। इसलिए खुदा का खौफ करते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए इस मजमून को खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और दिल नशीन करें, और अपने किरदार में एक पाकीज़ा तब्दीली पैदा करें, ताकि आपकी ये पाकीज़ा तब्दीली अगली नस्लों की इस्लाह और उनकी रूहानी तरक्की के लिए खाद का काम दे और बुनियादों का काम दे जिस पर अजीम इमारतें तामीर हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر